मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। AFEIS के आज 10 अगस्त 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी अमित कुमार गुप्ता का, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर तक होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपना पंजीयन कराया है। फ्रेंड्स, आज सोमवार का दिन है और सोमवार को अक्सर आपको ध्यान होगा कि मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के किसी एक मुद्दे को लेकर के बात किया करता हूं, तो आज भी मैं एक स्पेशल विषय पर बात करना चाहूंगा। और खासकर मेरे आज का विषय होगा कि रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद आप देख रहे हैं कि जो टॉपर्स हैं, अब YouTube पर और दूसरे माध्यमों से आपको उनके बारे में पढ़ने और जानने को मिल रहा है। न केवल पढ़ने और जानने को ही मिल रहा है, बल्कि उनके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, वो खुद अपनी ओर से भी बातें बता रहे हैं। तो इससे संबंधित मैं कुछ दिशा निर्देश के तौर पर आप लोगों से बात करना चाहूंगा। लेकिन सच पूछे तो आज कोई ऐसी घटना भी नहीं है कि मैं उनकी चर्चा पहले करूं और अपने मुख्य विषय पर बाद में आऊं। जहां तक कोरोना का संबंध है, तो कि लगभग हर सोमवार को मैं कोरोना के बारे में थोड़ी बहुत बातें आप लोगों से कर लेता हूं, चलिए आज भी कर लेता हूं। देखिए, बहुत ज्यादा संख्या भारत में लगातार बढ़ती चली जा रही है। प्रतिदिन मिलने वाली संख्या भी अब लगभग 60,000 के करीब पहुंच गई है। तो जब हम इसे सुनते हैं तो मन में खौफ सा आता है कि अरे बाप रे, कहां तो पहले हजारों में मिल रहे थे, अब एक दिन में 60,000 लोग मिल रहे हैं। लेकिन जब आप लॉजिकली सोचेंगे, क्योंकि लॉजिकली सोचा भी जाना चाहिए, तो फिर आपको सच्चाई कुछ दूसरे तरह की मिलेगी। जिस दौर में हजारों मिल रहे थे, उस समय पता लगा कि जो टेस्ट भी हो रहे थे वो 5,000-10,000 रोज हो रहे थे, और आज जो टेस्ट हो रहे हैं वो कल की बात है कि 7,10,000 के आसपास टेस्ट हुए हैं। तो 7,10,000 आसपास अगर टेस्ट हैं, तो स्वाभाविक है कि टेस्ट के रिजल्ट भी हमारे सामने आएंगे, तो मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, अभी तक नहीं बताया गया है कि भारत में पीक इसका आ चुका है, यानी कि उच्चतम शिखर पर हम पहुंच चुके हैं और वहां से डाउनफॉल शुरू हो गया है। भारत में अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है, तो इसीलिए अभी कोई इस तरह के संख्या में कमी के संकेत मिलेंगे या होंगे ही हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके जो दूसरे पक्ष हैं वो बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छी है। अब आप देखिए कि वो लगभग 68.78 या 68.82 कुछ ऐसा पहुंच गया है, तो ये अच्छा है। मतलब ये लग रहा है कि नहीं है, हमारे लोग काफी अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। डेथ रेट भी आप देखिए कि अब लगभग 2.01 या कुछ इसके आसपास हमारे डेथ रेट आ गई है, और केंद्र सरकार ने कहा है राज्यों से, मतलब स्पेशली कहा है कि इस डेथ रेट को हमें बहुत जल्दी 1% तक लेकर आना है। और अभी भी जो हमारी 2.01 या कुछ इसी तरह की डेथ रेट है, वो विश्व का जो औसत है उसकी तुलना में काफी बेहतर है। दोस्तों, इस तरह की बातें मैं केवल दो उद्देश्यों से आप सबसे करता हूं। पहला तो यह है कि चलिए इसी माध्यम से जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, अखबार उन्हें जिस तरीके से लिखते हैं उसके बारे में बताते हैं, तो उन सब के प्रति आपकी एक तार्किक दृष्टि विकसित हो सके कि सही मायने में चीजों को किस तरीके से लेना चाहिए। दूसरा ये भी है कि कोरोना को लेकर के हम सभी कहीं ना कहीं परेशान हैं। मानसिक स्तर पर निराशा घर घर जाती है कि क्या होगा, कब तक मुक्ति मिलेगी, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही को हो जाए, हमारे परिवार और हमारे संबंधी और परिचितों को हो जाए, ये आशंका बनी रहती है। हमारी एक्टिविटीज भी काफी लिमिटेड हो गई हैं। जो एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं या जो पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाले हैं, वो भी एक दबाव महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर इस तरह की थोड़ी सी बातें बताई जाए पॉजिटिव लेकिन सच्चाई के साथ, तो कहीं ना कहीं वो दबाव थोड़ा सा कम तो जरूर हो जाता है। बस इसी दृष्टि से मैं हर सोमवार को इस विषय पर आप सबसे थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता हूं। दोस्तों, मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। आज के मुख्य विषय के तहत मैंने सोचा कि मुझे खासकर एक बहुत ही व्यावहारिक विषय पर बात करना चाहिए, बहुत ही व्यावहारिक मुद्दे पर। अब आप देखिए कि जो टॉपर्स हैं वो अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने पिछले सोमवार को आप सबसे कहा था कि टॉपर्स रिजल्ट आ गया है, टॉपर्स अपनी अपनी बातें बताएंगे, लेकिन प्लीज आप उन सबको सुने और विश्वास कीजिए कि वो अपनी अपनी बातें अपने अपने ढंग से सही बता रहे हैं। अब उसको हटा दीजिए कि वो किसी कोचिंग में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, क्योंकि सामान्यतः देखिए होता यह है कि अगर वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के बोल रहे हैं या किसी मैगजीन या अखबार के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उन पर एक नैतिकता सा, नैतिक दबाव सा कुछ हो जाता है कि उस कोचिंग के बारे में कुछ बताएं या उसके साथ अपने किसी जुड़ाव की चर्चा करें, है ना। वो उनके अपने एक अलग विश मत आप यूं कह लीजिए कि मुद्दा होता है, उनकी अपनी एक अलग सोच होती है, आप उस हिस्से को छोड़ दीजिए। लेकिन जो बाकी वो बातें बता रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा आपको विश्वास करना चाहिए। ज्यादा शब्द का मैंने इसलिए कहा है कि देखिए बोलते समय कभी कभी होता ही है ना कि हमारे अंदर एक हीरोइक इमेज पैदा हो जाती है, है ना। हम अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताने की कोशिश करते हैं, अरे हमने ये संघर्ष किया, फलाना किया, वो किया। इसीलिए मैंने ज्यादा की बात कही, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उनकी बातों को सुनिए। यहां जो मेरा मेन मुद्दा है वो ये है कि आप उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में सुनिए। अगर आप एक दो वाक्यों को पकड़ करके ही अपने लिए उसे एक रास्ते का आधार बना लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको दो टॉपर्स के इंटरव्यूज पर के आधार पर कुछ बातें बताने जा रहा हूं। आप फोर्थ रैंक में जो आए हैं हिमांशु जैन, उनका सुनिए। इसके बाद टेंथ रैंक में आई हैं संजीता महापात्र, उनका सुनिए और ध्यान से सुनिए। जैसे संजीता महापात्र के चलिए मैं बात करता हूं। संजीता महापात्र ने यह कहा कि उन्होंने कोई कोचिंग नहीं की, कोई निर्देश नहीं लिया इस तरीके से, और वो अपनी तैयारी करती रही। हिमांशु जैन ने भी लगभग लगभग यही बात कही कि उन्होंने कहीं कोई कोचिंग नहीं की और अपने ढंग से वो तैयारी करती रही, करते रहे। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। तो अब अगर ये दो टॉपर्स, आप सोचिए कि फोर्थ रैंक और टेंथ रैंक में है, तो उन्होंने निर्देशन नहीं लिया यानी कि कोई कोचिंग नहीं की हम ये कहें, लेकिन इतनी अच्छी रैंक लेकर के आए, तो क्या इसके आधार पर आपको यह निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि नहीं नहीं कोचिंग की जरूरत नहीं है, या यूं कह लीजिए निर्देशन की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर निकाल सकते हैं क्योंकि हिमांशु ने ऐसा किया है और संजीता ने ऐसा किया है। बिल्कुल ऐसा किया है, प्रूव्ड है। लेकिन क्या हम सही मायने में इस निष्कर्ष को सही तरीके से निकाल पा रहे हैं? अब आप दोनों की बैकग्राउंड को जाइए और जो उन्होंने ये बात कही है उस बात के पीछे और दूसरी कौन सी ताकतें, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जैसे संजीता महापात्र का जब आप इंटरव्यू सुनेंगे तो वो बताती हैं कि जब मैं कॉलेज में थी तब से आईएएस मैं बनना चाहती थी, इंजीनियर बैकग्राउंड की हैं, तब से बनना चाहती थी। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, चलिए चाहने वाले तो कोई कभी भी चाह लें कि हम बचपन से ही सपना देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो उससे भी इंपॉर्टेंट बात कही वो उन्होंने ये कहा कि जो करंट अफेयर्स होते थे या अखबार पढ़ने का, इस शब्द का उन्होंने अखबार शब्द का, अखबार पढ़ने का उन्हें बहुत शौक रहा है, तो कॉलेज के टाइम से ही वो अखबार पढ़ने को बहुत तरजीह दिया करती थी। और इसके बाद उन्होंने बकायदे भेल में नौकरी ज्वाइन की, वहां भी वो अपने इस आदत को बनाए उन्होंने रखा, बकायदे उन्होंने बनाए रखा। और उन्होंने ये भी बकायदे कहा कि एनसीईआरटी की किताबें वो जब कॉलेज में थी तब भी वो पढ़ती रहती थी, इस तरह की बातें उन्होंने कुछ कही हैं। तो अब आप देखें कि भले ही फिर आप आखिरी में जब सुनते हैं तो फिर आपको सुनने को मिलता है कि उन्होंने फिर एक डेढ़ साल पहले, अभी सिलेक्शन से एक डेढ़ साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी और इसी की तैयारी वो करने लगी। अब आपको लगता है कि निर्देशन की जरूरत नहीं है, आपको ये भी लगता है कि नहीं नहीं सेलेक्ट होने के लिए नौकरी भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि नौकरी रास्ते में बाधक बनती है, छोड़ छाड़ करके तैयारी करें हम तभी सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर आप उन्हीं के इस वाक्य को भूल जाते हैं कि इससे पहले यही संजीता स्टेट सिविल सर्विस में, अपने राज्य के उड़ीसा स्टेट सिविल सर्विस में बाकायदे सेकेंड रैंक पर आ चुकी हैं, यानी कि उनके हाथ में ऑलरेडी एक नौकरी है जो अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में वो हैं। ठीक है, अभी वो आया नहीं होगा कॉल कि आप ज्वाइन करें, तो एक चूंकि वो बहुत ही सुरक्षित स्थिति में है, तो ऐसे में अगर वो सिविल सर्विस एक बड़े उद्देश्य के लिए नौकरी छोड़ भी रही है तो कोई रिस्क नहीं ले रही है, तो उनका ये जो स्टेप है वो पूरी तरह से रिस्कलेस स्टेप है। और उन्होंने फिर ये सोचा कि क्यों नहीं मैं पूरी तरह से इसी में जुट जाऊं, और उन्होंने ऐसा किया। इसके साथ ही साथ आप ये भी पाएंगे कि ये उनका पहला से दूसरा तीसरा अटेम्प्ट नहीं है, मुझे एग्जैक्ट तो देखिए ध्यान नहीं है, लेकिन शायद तीन अटेम्प्ट्स के बाद का ही अटेम्प्ट्स, ये फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट उनका है। तो जब और इसमें भी शुरू के जो दो दो तीन अटेम्प्ट दो एक अटेम्प्ट हैं उनमें तो शायद वो प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। इसका मतलब है कि उनके वो तैयारी कर रही हैं, इससे पहले भी तैयारी कर रही हैं, ठीक है। तैयारी करने के दौरान भले ही आपको सफलता न मिले लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में रहता ही है। और उन्होंने बकायदे ये बात कही है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, कि नहीं नहीं मुझे लगा कि नहीं मेरी स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी, मैं सही तरीके से तैयारी नहीं कर रही थी, तो मैंने अपने आप को ठीक किया और ठीक करने के बाद रिजल्ट मेरे सामने आ गए। इसका मतलब है कि आप ये उपाय इससे निष्कर्ष मत निकाल लीजिए कि नौकरी छोड़ने के बाद ही उन्होंने तैयारी शुरू की और एक डेढ़ साल की तैयारी से वो टेंथ रैंक पर आ गई। अगर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, बीच का अगर आप आगे पीछे का काट करके बीच के वाक्य को निकाल लेंगे तो वहां आपको ये वाक्य सुनने को मिल जाएगा। लेकिन क्या यह वाक्य सही मायने में आपके सामने संजीता महापात्र के सिविल सर्विस प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को पूरी तरह से व्यक्त करता है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट के जो प्रश्न होते हैं इसी तरह के कुछ व्यावहारिक से प्रश्न होते हैं कि क्या हम नौकरी छोड़ दें, क्या हम ये कर दें, क्या हम वो। आपको समझना होगा सभी की परिस्थितियां अलग अलग हैं। आप जितने भी टॉपर्स को सुनिए, कितने टॉपर्स अभी कहेंगे आपको किसी की भी परिस्थिति एक दूसरे के पैरेलल नहीं मिलेगी, एकदम समानांतर नहीं मिलेगी। जैसे हम हिमांशु जैन की बात करें, ठीक है वो हरियाणा के एक छोटी सी जगह के हैं, कुछ इस तरह से बताया गया है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि अरे यार ये तो बहुत छोटी सी जगह के हैं तो छोटी सी जगह पर भी रह करके तैयारी की जा सकती है। क्योंकि मेरे पास इस तरह के मेल आते हैं कि सर मैं अपना गांव छोड़ नहीं सकता और गांव ऐसा है कि जहां अखबार भी नहीं आता है, नेट बहुत धीरे चलता है, तो क्या मैं तैयारी कर सकता हूं? ये दिमाग में बात कहां से आती है? दिमाग में बात यहीं से आती है जब हम हिमांशु जैन जैसों के बारे में केवल पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से समझते नहीं है। देखिए अखबारों में आप पढ़ेंगे तो डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, लेकिन हिमांशु जैन ने अपनी बात बहुत डिटेल्स में बताई है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन शायद वो नाइन्थ टेंथ में ही जब थे तब वो दिल्ली आ गए, हरियाणा तो दिल्ली का पड़ोसी है, वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में ही रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की, शायद हिंदू कॉलेज या हंसराज कॉलेज, इन दोनों में से किसी एक कॉलेज के वो स्टूडेंट रहे हैं और अच्छे, मतलब ये दोनों के दोनों कॉलेज बहुत अच्छे कॉलेजेस में हैं। अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, शुरू से ही उन्होंने आईएएस के बारे में सोच रखा था कि नहीं मुझे देना चाहिए। तो अब आप ये बताइए कि जो शुरू से सोच लिया है जिसने, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां का माहौल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की दृष्टि से बहुत अच्छा है ना, वहां आपको ग्रुप मिल जाते हैं। अगर आपको ऐसा ग्रुप मिल जाता है, सही ऑनेस्ट ग्रुप, तो सच में किसी तरह के निर्देशन के गाइडेंस की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो उन्होंने किया और इसके बाद उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। तो आप परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए दो तरीके से। पहला तो यह कि भाई सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट क्या है, और दूसरा यह है कि ठीक है सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट ये है, हम मेरी परिस्थिति यह है, तो अब मैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार इस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल कर सकता हूं। दोस्तों तभी आप इन टॉपर्स के जो इंटरव्यूज आ रहे हैं उनसे सही मायने में लाभ उठा पाएंगे, अदरवाइज हो सकता है कि लाभ उठाने की बजाय भटकने की नौबत आ जाए। और मुझे लगता है कि मेरी बात को ध्यान में रखते हुए आप जरूर सुने और अपने साथ और उनके साथ भी भरपूर न्याय करेंगे। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अभय कुमार मिश्र हरदोई उत्तर प्रदेश से, शालिनी पांडे, लवकुश कुमार सिक्किम से, श्वेता पांडी तमिलनाडु से, रोहित सवधानी जयपुर से, सगुना श्रीमाली सानंद गुजरात से, प्राची दीमरी रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से, मयंक गुप्ता और जाडा रिंकी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।